ओम शांति। आप सभी का स्वागत करते हैं। हमारे बीच अभी सिस्टर वेरोनिका रशिया मॉस्को से आए हैं। आप 10 साल से ज्ञान में हैं और 2006 से आप मॉस्को मोंटीनेग्रो में गीता पाठशाला चलाते हैं और आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं वहाँ के वुमेन वेलफेयर कम्युनिटी में, पब्लिक स्पीकर भी हैं और वहाँ मोंटीनेग्रो में आपका अपना खुद का एक लिंग्विस्टिक कॉलेज है, स्कूल है जहाँ आप लैंग्वेजेस सिखाते हैं। और सिस्टर थैंक यू फॉर बीइंग हियर विद ऑल ऑफ अस, इट्स अ प्लेजर एंड यू आर गोइंग टू स्पीक विद अस अबाउट रिटोरिक। यस सिस्टर वेरोनिका।
ओम शांति। Yes, indeed, we are talking today about rhetoric. It's art of persuasion. Persuasion is convincement. So, and very mystically or surprisingly, Baba last 2 days dedicate a lot of attention, I think you noted this, to the art of speak. In today's Savyat Murli, it was a lot of inspiration for giving us this yukti, how to speak. And yesterday, Sakar Murli also dedicated to this faculty of speaking. Rhetoric is, first of all, art of manage the discourse, our speech. As a science, it's framed from the time of Aristotle, because he wrote a very famous book, a big one, a book called Rhetoric, where he designed all the rules and law of a good speaker. So, in our PowerPoint presentation, now it will be ready, we give some definitions from some famous people, for some philosopher, what is actually rhetoric. First of all, is art of persuasion. For us, as BK, this art is very important because our routine is to meet people, to communicate, and to be very, very persuading.
रिटोरिक का मतलब आप समझते हैं? मेरी आवाज आ रही है? यस। रिटोरिक का मतलब आप समझते हैं कि एक कला है किसी को पर्सुएड करने के लिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात? यस। किसी को कैसे अपनी बात को समझाना है, तो मैजिकली ऐसे बोलें कि आजकल की मुरलियों में आप देख रहे हैं कि बाबा ने इस पे बहुत फोकस भी किया कि आप अपनी बात को कैसे रखें, है ना? तो उसी के बारे में ये प्रेजेंटेशन है इनका। और बहुत पहले से ही बहुत सारे विद्वान ऐसे हुए हैं जिन्होंने रिटोरिक के बारे में बहुत सारी बातें कही हैं कि इस आर्ट को कैसे बताया जाए, कैसे देखे, जैसे कि टेक्स्ट के द्वारा, बोल के द्वारा, एथिक्स के द्वारा आप कैसे किसी को पर्सुए करते हैं। एरिस्टोटल के समय से ही उन्होंने एक किताब भी लिखी जिसका नाम रिटोरिक है, बहुत ही फेमस किताब हुई।
So, to be persuading, to be trustful for our audience, it's really require a lot of knowledge. I mean, special professional linguistic knowledge, because linguistic is a branch with which study this subject of rhetoric. Persuasion itself contain three main aspects. They have, how to say, the meaning, the words are in Greek, but it's ethos, pathos, and logos. Now we will reach it by the slides. Pathos is the most important appeal of the persuading, because it's appeal to the emotions of our listeners, our audience. So how much able we are to touch the emotions, to invite positive feelings of our listeners. On this capacity depends the success of our speech, of our objective of speech. Ethos, its appeal to the ethics, to values, morality of a speaker. And in this regard, we have to demonstrate our dharna, actually, how much moral we are, how much trustful, yes, as a speaker, as an author.
हम BKS के लिए ये बहुत ही important subject है क्योंकि हमें बोल के बहुत सारे काम करने होते हैं बहुत सारी सेवा हमारी वाचा से होती है ना तो persuasion के तीन major हिस्से हैं जिसको कहें Greek words हैं ये ethos, pathos और logos. Ethos is about ethics. ये ethics के बारे में है. जैसे जब आप किसी से बात करने के लिए जाएं तो वो आपको नहीं जानते पर वो आपके values को जानते हैं आपके character को जानते हैं तो वो आपकी बात को सुनेंगे. Logos मतलब logic. आप जो बोल रहे हैं उसमें कुछ logic होना चाहिए क्योंकि intellect logic को समझता है truth को accept करता है. और pathos Pathos is
emotions.
It's appeal to emotions. Like pathos, जो है वो आप जो बोले वो दूसरे की emotions को touch करना चाहिए तभी वो आपकी बात सुनेंगे वो आपसे persuade होंगे तो ये persuasion के तीन main हिस्से हैं.
Pathos require from us to be sincere. Yes, emotional in our speech. And so we can see many examples in Yagya of senior teachers. And first of all, maybe Ramesh Bhai is a very brilliant speaker. All of you remember his absolutely unique approach to audience. His speech is so deep, so unlimited and very expressive, and this is a kind of an example of a very talented rhetor. We can think about how different there are speakers which come before us and understand that this is a rhetoric which make this beauty of the speech. And here you can see that different people, they give their definitions. And first of all, Platon, for example, he defined rhetoric as an art to enlighten the soul. Yes, by words we can enlighten the soul and even we can give birth through our speech. And all of us, we have taken our spiritual birth through the speech as well.
हमने सुन के ही जन्म लिया ना बीके का जन्म हमें कैसे मिला किसी ने हमें ज्ञान दिया तो इट्स रिटोरिक से हम जन्म लेते हैं एक तरीके से. प्लेटोनिक का एक स्टेटमेंट आपने देखा होगा यहाँ पे, वो बताते हैं कि इसका मतलब क्या है. वो बोलते हैं कि रिटोरिक इज आर्ट ऑफ एनचैंटिंग दिस सोल, किसी भी आत्मा को परस्वे करने का आर्ट है रिटोरिक. और बाबा जब मुरली में मुरली चलाते हैं तो उसमें हमेशा परस्वे करते हैं सोल्स को, है ना. वो जो तीन मेन स्टेप्स मैंने बताए वो तीनों को यूज करते हैं. और रमेश भाई हैं, उनके स्पीचेस को आप कभी सुनेंगे तो ही हैज अ वेरी यूनिक पर्सनालिटी. जब आप उनको सुनते थे तो आप समझते थे कि वो कितना अनलिमिटेड वे में बात करते थे. उनके बोलने के तरीके अलग थे, ह्यूमर था, है ना, लॉजिक था, लव और लॉ का एक बैलेंस था, जिसके बारे में मुरली में भी अभी आजकल में आया.
रिटोरिक इटसेल्फ इज discriminating in two folders, oratory, rhetoric, and visual. Oratory rhetoric is connected with our speech, and visual with pictures. And we know how much attention Baba pays to presenting pictures to people to whom we giving gyan, and it makes sense because visual rhetoric has advantage in comparison to oratory rhetoric, because the perception is coming through the eyes, and our eyes, as we know from scientists, we perceive 80% information through our eyes. So visual rhetoric is very, very important.
रिटोरिक दो कैटेगरीज में है, विजुअल और ओरेटरी. और विजुअल इसमें से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि साइंटिस्ट का मानना है कि 80% परसुएशन विजुअली होता है. हम इमेजेस देख के ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, ज्यादा परसुए होते हैं. इसलिए मुरली में भी होता है ना, बाबा जब बोलते हैं तो कहते हैं विजन क्रिएट करो, देखो सत्युग में तुम ऐसे थे. विजन साथ में क्रिएट करने के लिए कहते हैं, वो आर्ट ऑफ परसुएशन है, आर्ट ऑफ परसुएशन.
Visual rhetoric regards interpretation of an image, the capacity to see what is behind of this image, of this picture, what meaning convey this image, what idea transferring through this image, what is intention of a sender, of an author, is behind of this image. And it's actually very effective mean of communication, which create an impact to the audience. In terms of text linguistic, this is an objective of this research. We have to categorize the text of Murli. It's one of the objectives. Okay. Categorize what kind of text we have in Murli. Because if some scientist who doesn't know nothing about Gyan take this text, and he must to give some category to this text. And in these terms, Murli texts belong to so-called hortatory, exposition or argument. Argument is a kind of text which provides imperative rhetoric. Imperative or deliberating rhetoric, which this kind of text include advice, direction, Shrimat. Yes, Shrimat is a supreme direction. So, and in this case, we can give a special traits of Murli as a as an argument. Argument include a claim, a challenge, yes, or some idea which must be sustained by author of the text. And this idea in Murli text are the points which must be proved, the truth which must be proved, and this truth, Baba is sustaining this truth. So all this arguing is around an image, because the image of Shiva is disappeared from Bharat. That's why Baba is touring on all religions and in all philosophical directions to find an image which is close to the true image of Shiva. And he presenting us a lot of substitutions which he challenging. And he must disapprove these substitutions. He must demonstrate the falsehood and lie. And this his rhetoric is totally dedicated to this target, to this goal. Just eliminate all the falsehood. And the main claim is who is sermonizer of Gita on the top of all? Yes, who is sermonizer of Gita? And Baba insistently developing the idea of Eknami. Only one is the source of truth. It's Shiva, not Krishna, not...
जब कोई और मुरली पढ़ता है जिसको पता नहीं होता कि मुरली का ऑथर कौन है, तो जब वो मुरली पढ़ेगा तो वो किसी एक कैटेगरी में उसको रखेगा, तो वो कैटेगरी आती है रोटेटरी एक्सपोजिशन, जो उपदेश देने वाले, इसका मतलब उपदेश देने वाले कुछ टेक्स्ट हैं, जब वो पढ़ेंगे तो उन्हें लगेगा कुछ प्रेरणादायी टेक्स्ट है, तो वो किसी एक कैटेगरी में रखेगा उसको. तो मुरली पढ़ के भी अगर किसी को लिंग्विस्टिक लैंग्वेजेस की नॉलेज है तो ये कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि इसका ऑथर कौन है. कोई मामूली इंसान नहीं होगा. और जब आप मुरली देखेंगे, पढ़ते हैं, जब हम उसको सुनते हैं, तो बाबा बहुत टू द पॉइंट हर चीज को एक्सप्लेन करते हैं. वो आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, और आर्ग्यूमेंट सिर्फ वही दे सकते हैं जो कुछ क्लेम कर रहे हैं. तो बहुत सारी ऐसे फॉल्स बातें भी होती हैं दुनिया में, तो फिलोसफिकली और रिलीजियसली बहुत सारी बातें बाबा डायरेक्टली मुरली में बोलते हैं. वो आर्ग्यूमेंट्स देते हैं क्योंकि कुछ क्लेम कर रहे हैं, ट्रूथ क्लेम कर रहे हैं, और हर बात उनकी कुछ विजुअल इमेजेस के अराउंड घूमती रहती है ना. हमेशा कुछ इमेजेस क्रिएट करते हैं हम जब मुरली पढ़ते हैं, तो बाबा इमेजेस के थ्रू हमें समझाते, परस्वे करने की कोशिश करते हैं. और कुछ भी बाबा जब ट्रूथ बताते हैं कि ये ट्रूथ है मुरली में, तो कोई भी चीज उसकी जगह रिप्लेस कर नहीं सकते. जैसे बाबा बोलते हैं कि ये मैं ज्योति बिंदु हूं, तो उसकी जगह बाबा कुछ एसोसिएट नहीं कर सकते, कुछ और सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट करने के लिए मना करते हैं. मतलब डायरेक्टली बोलते हैं ज्योति लिंग नहीं कर सकते, कृष्णा नहीं रख सकते, सिर्फ ज्योति बिंदु, तो कुछ भी सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते. तो जो मुरली में चल रहे हैं ना अभी, लव और लॉ, ट्रूथ बोलते हैं लेकिन लॉ के साथ, लव के साथ ट्रूथ बोलते हैं. कई बातें ऐसी मुरली में आती हैं जो किसी को बुरी लग सकती हैं, है ना, लेकिन वो फिर भी बाबा लव के साथ बोलते हैं तो बुरी नहीं लगती. तो कल की मुरली में एंडिंग में ये था ना कि कुछ अभी बॉम्ब गिराओ, तो कुछ मीठा मीठा नहीं बोलो, कुछ हिलाओ उनको ताकि वो आपकी बात समझे. अपने स्टेज पे कुछ ऐसे बॉम्ब्स गिराओ, तो लव के साथ ये काम करो ताकि उनको ये समझ, क्योंकि इंटेलेक्ट जो होता है ना वो ट्रूथ एक्सेप्ट करेगा. उसका नरिशिंग, इंटेलेक्ट को नरिश कैसे करते हैं, ट्रूथ से कर सकते हैं. तो वो एक्सेप्ट करेगा, पर प्यार के साथ करेगा.
नो अनदर क्लेम, इट्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइम, इट्स टाइम, एंड who am I, and all this list of identifications. Yes, Baba is working on it to identify the soul, identify the supreme soul, I identify time.
सारी मुरली इसी के बारे में होती है. बाबा आए ही सिर्फ ये बताने के लिए कि आप कौन हैं, समय क्या है, बाबा कौन है और आपका पाठ क्या है.
Identify conditions of intellect in this time and compare the condition of intellect of this time with initial time when the intellect is in its perfect
intellect ke comparison kare pehle ke samay mein hamara intellect kaisa tha abhi kaisa hai aur kaisa banana hai use.
That's why Baba's rhetoric is very allegoric, a lot of allegory, a lot of metaphors,
humor. और बहुत सारी ऐसी बातें बाबा जब मुरली में बोलते हैं तो वो इंक्लूड करते हैं.
These linguistic figures, so called, it's a term of, they help to be persuading.
ये सभी परस्वे करने में हेल्प करते हैं. तो हम मुरली से ये सीख सकते हैं कि कैसे दूसरों को परस्वे करें क्योंकि बाबा हमें परस्वे कर रहे हैं.
तो
we have to end it, sister. We already out of time.
Yes, we already. So now we have to finish our communication, and it would be nice if you have question and find some manner to ask or
आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं. और एक पेपर भी है जो प्रेजेंटेशन का एक पेपर है जो आप बाहर से ले सकते हैं. और आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो इफ यू वांट टू इन्वेस्टिगेट इनटू लिंग्विस्टिक थिंग्स एंड रिटोरिक आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं.
And if some one of you have special interest for linguistic analysis, then it's interesting because we can find
not now we are out of time.
Yes, we can find someone else who is interested to
koi aur bhi interested hai isme
to research Murli or
Murli ke upar research karna
इसके
बारे में इन्वेस्टिगेट करना एनालिसिस करना.
Where is humor versus irony, because Baba's attitude to this world is very ironic. Irony is a very strong device of rhetorical device, so we can underline these points of irony, of allegory, and it's a really very creative creative kind of churning Murli.
ये churn करने के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि जैसे आप इस बात में local chapters में ऐसा करते हैं ना, group बना के किसी topics पे Murli के points निकालते हैं, तो उसी तरीके से ये कार्य भी कर सकते हैं. churn करने के लिए बहुत अच्छा एक medium है ये.
So you're welcome. Om Shanti.
Thank you, sister, for being with us. It was, I think it was interesting. I don't know if anybody else understand it, but it was really interesting. Yes, thank you so much. Veronica Ben ka bahut bahut shukriya ki wo hamare sath itna time diya. She came from Moscow. Thank you, sister.